नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर द हार्ड पार्ट्स, मॉडर्न ट्रेड ऑफ एनालिसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स, नील फोर्ड, मार्क रिचर्ड्स। प्रमोद सदलागे और झमक देहघानी की तकनीकी पुस्तक है। यह वितरित प्रणालियों के लिए किसी एक आदर्श डिजाइन का दावा नहीं करती। इसका केंद्रीय तर्क है कि आर्किटेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वे कठिन हिस्से हैं जिनके लिए तयशुदा सर्वोत्तम तरीका उपलब्ध नहीं होता। हर विकल्प कुछ लाभ देता है और किसी अन्य गुण जैसे विश्वसनीयता, स्वतंत्र परिनियोजन, प्रदर्शन, लागत या संचालन की सरलता पर दबाव डालता है। पुस्तक काल्पनिक सिसॉप स्क्वाड के प्रसंगों के माध्यम से इन दुविधाओं को ठोस बनाती है। इसका लक्ष्य पाठक को माइक्रोसर्विस अपनाने का नुस्खा देना नहीं, बल्कि सेवा सीमाओं, डेटा स्वामित्व, कॉन्ट्रैक्ट, वर्कफ्लो, ट्रांजैक्शन और परिचालन गुणों पर तर्कपूर्ण निर्णय लेना सिखाना है। इसलिए यह डिजाइन पैटर्नों की सूची से अधिक निर्णयों के कारण, परिणाम और दस्तावेजीकरण पर केंद्रित व्यावहारिक विश्लेषण है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कठिन हिस्सों की पहचान, जहां सर्वोत्तम उत्तर नहीं बल्कि समझौता होता है। पुस्तक आर्किटेक्चर के कठिन हिस्से को ऐसी समस्या मानती है जिसका कोई सार्वभौमिक सर्वोत्तम समाधान नहीं है। वितरित सिस्टम में एक निर्णय अक्सर कई परस्पर विरोधी लक्ष्यों को बदलता है। उदाहरण के लिए, सेवा को छोटा करने से टीम की स्वायत्तता और अलग परिनियोजन संभव हो सकता है, लेकिन नेटवर्क कॉल, विफलता के बिंदु, निगरानी और डेटा समन्वय बढ़ सकते हैं। इसके उलट, बड़ी सेवा संचालन को सरल रख सकती है पर परिवर्तन की गति और स्वतंत्रता घटा सकती है। लेखकों का आग्रह है कि वास्तुकार तैयार उत्तर खोजने के बजाय संदर्भ स्पष्ट करे। व्यवसाय को क्या चाहिए, कौन से गुणवत्ता गुण निर्णायक है, किस प्रकार की विफलता स्वीकार्य है और किस जटिलता को टीम वास्तव में संभाल सकती है। यह दृष्टि माइक्रोसर्विस को स्वतः बेहतर मानने की प्रवृत्ति का प्रतिरोध करती है। पुस्तक निर्णयों के पीछे के कारण को कार्यान्वयन के विवरण से अधिक महत्वपूर्ण बताती है। जब कारण दर्ज किए जाते हैं तो बाद में टीम समझ पाती है कि विकल्प किन धारणाओं पर लिया गया था और वे धारणाएं बदलने पर निर्णय को कब दोबारा जांचना चाहिए। इस प्रकार ट्रेड ऑफ विश्लेषण बहस को व्यक्तिगत पसंद से हटाकर प्रमाण, प्राथमिकता और परिणामों की चर्चा में बदलता है। दूसरा, आर्किटेक्चरल क्वांटम से वितरित सिस्टम की वास्तविक सीमा समझना। वितरित आर्किटेक्चर में सेवा की सीमा और तैनाती की सीमा हमेशा एक ही नहीं होती। पुस्तक आर्किटेक्चरल क्वांटम की अवधारणा के जरिए उस न्यूनतम हिस्से पर ध्यान देती है जिसे अपने कार्य को पूरा करने के लिए साथ में चलना, परिनियोजित होना और आवश्यक डेटा तक पहुंचना पड़ता है। यह अवधारणा केवल कोड मॉड्यूल गिनने के बजाय व्यावहारिक स्वतंत्रता जांचने में मदद करती है। यदि दो कथित रूप से अलग सेवाएं हर बदलाव में साथ रिलीज होती है, एक ही डेटा संरचना पर निर्भर है या एक के बिना दूसरी उपयोगी नहीं है, तो उनकी स्वतंत्रता सीमित है। ऐसी स्थिति को केवल अलग रिपोजिटरी या अलग कंटेनर से सुधार नहीं मिलता। क्वांटम की पहचान टीमों को यह प्रश्न पूछने देती है कि सीमा वास्तव में डोमेन, डेटा, संचालन और संचार के स्तर पर कहाँ है। इससे अनावश्यक विखंडन का जोखिम घटता है, क्योंकि बहुत छोटी सेवाएं भी एक दूसरे पर लगातार निर्भर होकर जटिल वितरित मोनोलिथ बना सकती है। दूसरी ओर, जहां अलग क्वांटम स्पष्ट हो, वहां स्वतंत्र स्केलिंग, अलग रिलीज गति और बेहतर जवाबदेही संभव हो सकती है। पुस्तक इस विचार को डिजाइन की स्थिर परिभाषा नहीं बल्कि निर्भरताओं को देखने का विश्लेषणात्मक उपकरण बनाती है। इसलिए इसका उपयोग मोनोलिथ तोड़ने से पहले और मौजूदा माइक्रोसर्विस सिस्टम की वास्तविक मॉड्यूलरिटी जांचने में विशेष रूप से उपयोगी है। तीसरा, सेवा ग्रैनुलैरिटी, कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट डिजाइन में युग्मन का संतुलन। सेवा ग्रैनुलैरिटी का प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितनी सेवाएं बनाई जाए, असली प्रश्न यह है कि कौन सी जिम्मेदारियां, डेटा और परिवर्तन एक साथ विकसित होने चाहिए और किनके बीच स्पष्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पुस्तक प्रत्यक्ष सेवा कॉल, इवेंट और साझा डेटा से बनने वाले युग्मन पर विचार कराती है। कॉन्ट्रैक्ट किसी सेवा की सीमा बचा भी सकते हैं और गलत ढंग से बनाए जाने पर उसे भंग भी कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता प्रदाता की आंतरिक डेटा संरचना, रिलीज समय या विशेष व्यवहार पर निर्भर हो जाए तो स्वतंत्र परिवर्तन कठिन हो जाता है। इवेंट आधारित डिजाइन में भी हर छोटी स्थिति को अलग इवेंट बनाने से संदेशों की बाढ़ और समझने में कठिन प्रवाह पैदा हो सकता है। पुस्तक इस तरह की अत्यधिक सूक्ष्म इवेंट संरचना को स्वार्म ऑफ ग्लैड्स एंटी पैटर्न के रूप में चर्चा में लाती है। इसके बदले इवेंट का उद्देश्य, उपभोक्ताओं की जरूरत और डोमेन अर्थ स्पष्ट करना जरूरी है। डिराइव्ड इवेंट ग्रैनुलैरिटी जैसे विचार यह जांचने में मदद करते हैं कि मूल परिवर्तन से उपभोक्ता के लिए उपयोगी सूचना कैसे निकले। लक्ष्य अधिकतम डिक्लिंग का नारा नहीं है, लक्ष्य इतना युग्मन रखना है कि सिस्टम समझने योग्य, विश्वसनीय और विकसित होने योग्य रहे, जबकि अनावश्यक समन्वय और रिलीज निर्भरता नियंत्रित हो। चौथा, डेटा टोपोलॉजी और वितरित ट्रांजैक्शन। स्वतंत्रता की वास्तविक कीमत जब मोनोलिथ को वितरित सेवाओं में बांटा जाता है तो सबसे कठिन प्रश्नों में से एक डेटा का होता है। पुस्तक मोनोलिथिक डेटा, डोमेन केंद्रित डेटा और प्रति सेवा डेटाबेस जैसी टोपोलॉजी के लाभ तथा सीमाएं सामने रखती है। साझा डेटाबेस आरंभ में रिपोर्टिंग, लेन देन और परिचित संचालन को सरल बना सकता है, लेकिन सेवा सीमाओं को कमजोर कर सकता है। प्रति सेवा डेटा स्वामित्व स्वायत्तता बढ़ाता है, पर डेटा दोहराव, संगति, प्रश्नों और बदलावों की नई समस्याएं लाता है। इसलिए डेटा को केवल भंडारण का विषय नहीं बल्कि डोमेन जिम्मेदारी और कॉन्ट्रैक्ट का विषय समझना जरूरी है। वितरित ट्रांजैक्शन में पारंपरिक एकल एटॉमिक प्रतिबद्धता की अपेक्षा अक्सर व्यावहारिक नहीं रहती। सेवाओं के बीच नेटवर्क विलंब, आंशिक विफलता और अलग डेटा स्टोर के कारण टीमों को क्षतिपूरक क्रियाओं, इवेंट आधारित समन्वय और अंतिम संगति जैसे विकल्पों पर विचार करना पड़ता है। ऐसे विकल्प उपयोगकर्ता अनुभव और व्यवसाय नियमों पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, किसी अनुरोध का अस्थायी रूप से लंबित रहना स्वीकार्य है या नहीं, यह तकनीकी नहीं बल्कि व्यावसायिक निर्णय भी है। पुस्तक का योगदान यह है कि वह डेटा विकेंद्रीकरण को सिद्धांत के रूप में नहीं बेचती। वह पूछती है कि किस सीमा तक स्वतंत्रता चाहिए, संगति की कौन सी गारंटी आवश्यक है और क्या संगठन उस परिचालन जटिलता के लिए तैयार है। अंत में वर्कफ्लो, ऑर्केस्ट्रेशन और परिचालन गुणों को एक साथ तौलना, वितरित सिस्टम में एक व्यवसाय प्रक्रिया कई सेवाओं से होकर गुजर सकती है। तब निर्णय होता है कि प्रवाह को किसी केंद्रीय ऑर्केस्ट्रेटर द्वारा नियंत्रित किया जाए या सेवाएं इवेंट के आधार पर कोरियोग्राफी से प्रतिक्रिया दे। केंद्रीय ऑर्केस्ट्रेशन प्रक्रिया को देखना, जांचना और बदलना आसान बना सकता है, लेकिन नियंत्रक एक महत्वपूर्ण निर्भरता बन सकता है। कोरियोग्राफी सेवाओं को अधिक स्वतंत्र रख सकती है, पर पूरी प्रक्रिया का दृश्य, त्रुटि विश्लेषण और परिवर्तन का प्रभाव समझना कठिन हो सकता है। पुस्तक इन विकल्पों को शैलीगत पसंद के बजाय वर्कफ्लो की जटिलता, विफलता प्रबंधन और टीम की परिचालन क्षमता से जोड़ती है। यही दृष्टि स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी और प्रदर्शन तक जाती है। किसी सेवा को स्वतंत्र रूप से स्केल करने योग्य बनाने के लिए स्टेट, डेटा पहुंच, संदेश कतार और डाउनस्ट्रीम निर्भरताओं को भी देखना पड़ता है। केवल अधिक इंस्टेंस चलाना पर्याप्त नहीं यदि बाधा साझा डेटाबेस या समकालिक कॉल श्रृंखला में हो। इलास्टिसिटी का अर्थ मांग के साथ संसाधन बढ़ाना और घटाना है, जबकि प्रदर्शन विलंब, थ्रूपुट और संसाधन उपयोग के अलग प्रश्न उठाता है। पुस्तक बताती है कि इन गुणों में भी टकराव हो सकता है, इसलिए डिजाइन को लक्ष्य गुणवत्ता गुणों, मापनीय संकेतकों और स्वीकृत समझौतों से जोड़ना चाहिए। यह परिचालन सोच आर्किटेक्चर को केवल निर्माण चरण का काम मानने से रोकती है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्टों, टेक लीडों, अनुभवी डेवलपरों, डेटा आर्किटेक्टों, डाटाबेस पेशेवरों और उत्पाद निर्णयों से जुड़े लोगों के लिए सबसे उपयोगी है, जो वितरित सिस्टम के वास्तविक परिणामों को समझना चाहते हैं। यह आरंभिक प्रोग्रामिंग पाठ्यपुस्तक नहीं है, न ही किसी फ्रेमवर्क या क्लाउड सेवा का चरणबद्ध मार्गदर्शक। पाठक को सेवाओं, एपीआई, डेटा और परिनियोजन की बुनियादी समझ होने पर इसका लाभ अधिक मिलेगा। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि टीम निर्णयों को अधिक स्पष्ट भाषा में चर्चा और दर्ज कर सकती है, मसलन माइक्रोसर्विस सीमा, साझा डेटा। इवेंट या ऑर्केस्ट्रेटर चुनते समय केवल लोकप्रियता या व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर रहने के बजाय वह गुणवत्ता गुणों, निर्भरताओं और विफलता स्थितियों को तौल सकती है। पुस्तक समान विषय की कई पुस्तकों से इसलिए अलग है कि यह पैटर्नों को सही उत्तर के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। यह उन स्थितियों पर केंद्रित है जहां दो उचित विकल्पों के बीच चयन करना पड़ता है। सिसॉप स्क्वाड का कथात्मक ढांचा तकनीकी समस्याओं को संदर्भ देता है, जबकि आर्किटेक्चरल क्वांटम, डेटा टोपोलॉजी और इवेंट ग्रैन्युलैरिटी जैसे विचार विश्लेषण को ठोस आधार देते हैं। इसकी सीमा भी यही विशेषता है, क्योंकि यह संपूर्ण आर्किटेक्चर संदर्भ ग्रंथ बनने की कोशिश नहीं करती। फिर भी वितरित आर्किटेक्चर में जटिलता को ईमानदारी से देखने और निर्णय के पीछे का कारण समझने के लिए यह एक विशिष्ट उपयोगी पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं म्यूफोर्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।